प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पेडागॉजी ऑफ साइंस के अंतर्गत इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के तहत सेमिनार इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का अध्ययन करेंगे। राजा एवं राव सेमिनार इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को, सेमिनार मेथड को परिभाषित करते हुए कहते हैं, सेमिनार इज अ टीचिंग टेक्निक फॉर हायर लर्निंग। अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक इज डिलीवर्ड एज एन आर्टिकल और रिपोर्ट इन द सेमिनार। द आर्टिकल एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स सबमिटेड इन द सेमिनार आर एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड थ्रू ग्रुप डिस्कशन टू अराइव अ फाइनल डिसीजन और कॉन्सेप्ट। तात्पर्य, सेमिनार या संगोष्ठी एक ऐसी शिक्षण तकनीकी है, एक ऐसी नवाचारी शिक्षण विधि है जिसके तहत अंडरस्टैंडिंग लेवल एवं रिफ्लेक्टिव लेवल पर टीचिंग संभव होती है। बोध स्तर और चिंतन स्तर का शिक्षण इस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के माध्यम से संभव होता है। सेमिनार जब आयोजित किए जाते हैं तो उन सेमिनार्स में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भागीदार व्यक्ति होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वे किसी विषय को जो कि पहले से ही तय किया जाता है, पूर्व निर्धारित होता है, उस विषय अथवा उस शीर्षक के संदर्भ में लेख, शोध पत्र, रिपोर्ट्स आदि कलेक्ट करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, आपस में एक दूसरे के सामने उसको पढ़ते हैं, प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुतिकरण के उपरांत उस पर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो भी जनरलाइजेशंस होते हैं, जो भी सामान्यीकरण होते हैं, जनरल कंक्लूजन्स होते हैं, सामान्य निष्कर्ष होते हैं, उनका निर्धारण किया जाता है और इस प्रकार सेमिनार इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अपना कार्य करती है। अब हम ये जानेंगे कि सेमिनार इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, संगोष्ठी, अनुदेशनात्मक प्रविधि का एम क्या है। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमिनार, क्यों संगोष्ठियां एवं सेमिनार्स आयोजित किए जाएं, इनका प्राप्तव्य क्या है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए सेमिनार इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पर जा करके टीचिंग की स्ट्रेटजी है, तो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से, इस नीति के माध्यम से, संगोष्ठी की नीति के माध्यम से विद्यार्थियों में जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी उच्च संज्ञानात्मक अभिक्षमताएँ हैं, उनको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब ये उच्च संज्ञानात्मक अभिक्षमताएँ क्या हैं? रीजनिंग, लॉजिक, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, ये जो विशिष्टताएं हैं मानव मस्तिष्क की, मानव की जो ज्ञान प्राप्ति की दिशा में किसी विद्यार्थी की, किसी शिक्षक की, किसी लर्नर की सहायता करती हैं। ये हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अंतर्गत आ सकती हैं और इनको डेवलप करने का कार्य सेमिनार माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से सरलता के साथ किया जा सकता है। सेमिनार या संगोष्ठी के माध्यम से विद्यार्थियों में कीन ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म प्रेक्षण और अनुभवों एवं उनकी जो भावनाएं हैं उनको तीक्ष्णता, उनको पैनापन देने का भी प्रयास किया जा सकता है। साथ ही साथ संगोष्ठी का एक और उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थी जो भी विचार, जो भी विषय, जो भी शीर्षक जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, उस शीर्षक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पक्ष संभव हो सकते हैं, जितनी भी डायमेंशंस उसकी संभव हो सकती हैं, उन सभी डायमेंशंस का प्रभावपूर्ण तरीके से स्पष्टीकरण उनके सम्मुख हो जाए, क्लैरिफिकेशन, इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन उनके सम्मुख हो जाए। साथ ही साथ चूँकि ये संगोष्ठी ग्रुप में ही संपादित हो सकती है, एक कोई ग्रुप होगा, एक कोई समूह होगा, तभी संगोष्ठी संगठित की जा सकती है और संपादित की जा सकती है। तो इस ग्रुप में किसी शीर्षक पर, किसी विषय पर तमाम व्यक्ति तमाम प्रकार के वक्तव्य देते हैं, तमाम प्रकार के उनके किसी विषय के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, पक्ष होते हैं, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना भी सीखता है और आपस में जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो जो नॉन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, किसी शीर्षक से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, उनको इरेडिकेट कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल फैक्ट्स हैं, उनको चुन चुन करके उन पर आम सहमति, एक जनरलाइजेशन फाइंड किया जाता है। और इस प्रकार से संगोष्ठी की जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विचारों का आदर करना भी सिखाती है। साथ ही साथ सेमिनार की जो स्ट्रेटजी है, जो संगोष्ठी की स्ट्रेटजी है, वो विद्यार्थियों को गुड क्वेश्चन एंड राइट क्वेश्चन पोज करना, फ्रेम करना, सही सवाल और अच्छा सवाल फ्रेम करना सिखाती है। साथ ही साथ यह गुड क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन के गुड आंसर और राइट आंसर भी फ्रेम करना सिखाती है। यह भी इसका एक उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को सही सवाल और अच्छा सवाल बनाना सिखाना और सही उत्तर और अच्छा उत्तर निर्मित करना सिखाना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो संगोष्ठी स्ट्रेटजी है, नीति है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं इसमें सम्मिलित हैं। तो पहली तो विशेषता हम लोग इसके कैरेक्टर से ही देख रहे हैं कि ये एक ग्रुप स्ट्रेटजी है, कोलेबोरेटिव स्ट्रेटजी है, जहाँ पर एक ग्रुप में कोई काम आपसी सहयोग के साथ किया जाता है। दूसरी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख रहे हैं संगोष्ठी की, कि यहाँ पर विद्यार्थी को स्व अनुभव द्वारा सीखने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ विद्यार्थी को कुछ किसी विषय के संदर्भ में कुछ नया खोज करने की और उस खोजे हुए ज्ञान को, खोजे हुए फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को अपने पीयर ग्रुप के सम्मुख प्रस्तुत करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। साथ ही साथ विद्यार्थी अपने द्वारा खोजे गए ज्ञान, अपने द्वारा खोजी गई इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स को केवल अपने दृष्टिकोण से ही मूल्यांकित करना नहीं सीखते, बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण से भी मूल्यांकित करना, इवैल्यूएट करना सीखते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी ज्ञान होता है, उसको दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण, निरीक्षण एवं वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों में ये आत्मविश्वास, आत्म पर्याप्तता का विकास करती है। चूंकि समूह की स्ट्रेटजी है, समूह में ही संपादित होती है, अतः विद्यार्थियों का सामाजिकरण करना भी एक इसकी विशेषता है। विद्यार्थियों का सोशलाइजेशन भी ये स्ट्रेटजी करती है। विद्यार्थियों के मध्य आपसी अंतःक्रियाएं अत्यधिक संगोष्ठी विधि में हो सकती हैं। ये जैसा ट्रेडिशनल मेथड होता है टीचिंग का, जहाँ शिक्षक ही सक्रिय रहता है, विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहते, उस पर भी उस मोनोटोनस प्रोसेस को भी ये इरेडिकेट करती है और प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। चूंकि हमेशा सेमिनार किसी थीम स्पेसिफिक होता है, किसी थीम विषय से संबंधित होता है, किसी विशिष्ट विषय, विशिष्ट शीर्षक पर इस पर चर्चा हो रही होती है, अतः जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी का ये भरसक प्रयत्न होता है कि वह अधिकतम इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स इनको अपने पीयर ग्रुप के सम्मुख प्रेजेंट करें और एक सॉलिड नॉलेज, एक अनकंडीशनल नॉलेज, एक जनरलाइज्ड नॉलेज, एक वेरीफाइड नॉलेज को क्रिएट करें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विद्यार्थियों में ये प्रश्नोत्तर का कौशल तो उत्पन्न करती ही करती है। साथ ही साथ तमाम प्रकार के जो वाइटल डेटा होते हैं, वाइटल फैक्ट्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग, कैसे उनका संसाधन करना है, उनकी कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे उससे रिजल्ट फाइंड करना है, कैसे उनका प्रेजेंटेशन करना है, ये भी विद्यार्थी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि इसमें कुछ विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, अतः विद्यार्थी कुछ अन्य ऐसी वाइटल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को भी गेन करते हैं जो शिक्षक द्वारा उनको दिया जाना सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं था। और एक अन्य बात, ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, तो नवीन शोध और उससे उत्पन्न ज्ञान और फैक्ट भी विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाते हैं। और किसी भी विषय का मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, किसी भी शीर्षक का बहुविमीय विश्लेषण इस स्ट्रेटजी के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेमिनार के टाइप्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं सेमिनार। तो सेमिनार्स को मेनली चार प्रकारों में बांटा गया है। सूक्ष्म संगोष्ठी, मिनी सेमिनार, जब किसी क्लास के अंदर किसी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक पर सेमिनार के रूप में डिस्कशन होता है तो इसको मिनी सेमिनार कहते हैं। दीर्घ सेमिनार, दीर्घ संगोष्ठी, मेजर सेमिनार, जब एक ही इंस्टीट्यूट के कई विभागों में इंटर डिपार्टमेंटल सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, उनके कोलैबोरेशन के माध्यम से सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है, तो इसे मेजर सेमिनार कहा जा सकता है। नेशनल सेमिनार, जब राष्ट्रीय स्तर पर तमाम इंस्टीट्यूट्स, तमाम विचारक, तमाम शोधकर्ता, तमाम फंडिंग एजेंसीज मिल करके किसी सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन, संगठन करते हैं, तब इसको नेशनल सेमिनार की संज्ञा दी जाती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर से लोग विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न शोध संस्थाओं से, विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं, अकादमिक संस्थाओं से लोग आते हैं और शीर्षक के तहत, किसी विषय के तहत अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने द्वारा खोजी गई इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, अपने द्वारा की गई रिसर्च को अपने पीयर ग्रुप के सामने रखते हैं और विचार विमर्श करके जनरलाइजेशन फाइंड करते हैं, सामान्यीकरण फाइंड करते हैं, जनरल कंक्लूजन्स फाइंड करते हैं, सामान्य निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है। और फोर्थ, इंटरनेशनल सेमिनार, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघ संगठन मिलकर के किसी सेमिनार का आयोजन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को आदि जैसी संस्थाएं किसी विषय विशेष पर संगोष्ठी का आयोजन करती हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार होता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विषय पर, किसी शीर्षक के संदर्भ में की जा रही नवीन खोजों, नवीन शोधों, नवीन अनुसंधानों आदि से उत्पन्न ज्ञान को अपने पीयर ग्रुप के सम्मुख रख करके उस पर एक वैलिड जनरलाइजेशन फाइंड किया जाता है, एक वैध सामान्यीकरण, वैध कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया बनाई जाती है। जब सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेमिनारों का संगठन, संगोष्ठियों का संचालन किया जाता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है उनका, तो उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ व्यक्ति जो कार्य करने वाले होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनके माध्यम से ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? सामान्यतः किसी भी सेमिनार में 5 प्रकार के स्टेक होल्डर्स को हम पाते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजर्स, ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्थाएं जिन्होंने उस सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया है। दूसरे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ऐसे व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उसके एकेडमिक एक्सपीरियंस को रखते हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस को रखते हैं। इन एकेडमिक एक्सपर्ट्स, इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स में से ही कीनोट स्पीकर, चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ द सेमिनार, कन्वीनर ऑफ द सेमिनार, इनको चुना जाता है। तीसरे, स्पीकर्स ऑफ द सेमिनार, जो स्पीकर्स ऑफ द सेमिनार जो अपने द्वारा खोजे गए ज्ञान को, अपने द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स को, अपने द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स को, अपने द्वारा जो अपने द्वारा जो डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स हैं, उनको पीयर ग्रुप के सामने रखते हैं, ये होते हैं स्पीकर्स ऑफ द सेमिनार। और फिफ्थ, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेमिनार, ऐसे व्यक्ति जो उस विषय विशेष में रुचि रखते हैं, अथवा विषय विशेष का अध्ययन कर रहे होते हैं, अथवा विषय विशेष के संदर्भ में कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं, या और कोई जानकारी अन्य व्यक्तियों को डेजिग्नेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स के तौर पर किसी सेमिनार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और फिफ्थ है, ऑब्जर्वर, ऐसे व्यक्ति जो उस संपूर्ण संगोष्ठी की प्रक्रिया को प्रेक्षित करते हैं, उसकी वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ कोई संगोष्ठी हुई और यह वैध संगोष्ठी थी और इसके माध्यम से ये निष्कर्ष प्राप्त किए गए। इस प्रकार पांच प्रकार से लोग इसमें, पांच प्रकार के स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी संगोष्ठी जो स्ट्रेटजी है उसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, उसकी अच्छी बातें क्या क्या हैं, उसके एडवांटेजेस लाभ क्या क्या हैं। किसी भी संगोष्ठी में स्पॉन्टेनियस लर्निंग हैपन होती है कि आप सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं और अचानक आपको एक वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल फैक्ट, वाइटल नॉलेज प्राप्त हो जाती है और ये स्पॉन्टेनियस लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग इटर्नल लर्निंग होती है और ये जीवन भर के लिए हम सीख जाते हैं। जो संगोष्ठी है इसका जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये अधिगमकर्ता केंद्रित इसका उपागम है। इसमें सेमिनार स्ट्रेटजी में, संगोष्ठी में इंफॉर्मेशन सीकिंग, व्यक्ति जब क्वेश्चनिंग करता है, व्यक्ति जब प्रेजेंटर आंसर देता है, पार्टिसिपेंट क्वेश्चनिंग करता है, पेपर प्रेजेंटर आंसर देता है, तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन सीकिंग होता है, अधिकतम सूचना प्राप्ति। ये सेमिनार की मेरिट है कि अधिकतम सूचना की प्राप्ति आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर पेपर प्रेजेंट किया तो आप ये जानने की कोशिश उससे कर सकते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से कि उसके निष्कर्षों का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे उसने रिसर्च कंडक्ट की, जब उसने रिसर्च शुरू की तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आईं, कैसे उसने इस ये सोचा कि हमको इस विषय पर ही अपना शोध कार्य करना है या इस विषय पर ही हमें अपना लेख लिखना है। तो तमाम प्रकार की जो व्यवहारिक सूचनाएँ हैं किसी ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया की, उनके भी क्लेरिफिकेशन सेमिनार स्ट्रेटजी के माध्यम से हो सकते हैं और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन पार्ट तो डिस्कस किए ही जा सकते हैं। किसी भी नॉलेज के एप्लीकेशन पार्ट को भी डिस्कस किया जा सकता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन सीकिंग और फाइंडिंग अ जनरलाइजेशन, फाइंडिंग कंक्लूजन्स, वैलिड कंक्लूजन्स, ये सेमिनार की एक बड़ी विशेषता है, बड़ा लाभ है जो आसानी से हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो पेपर प्रेजेंटर होता है, चूंकि उसने पेपर अपना खुद बनाया होता है, शोध अपना खुद किया होता है, तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है किसी रिसर्च का, किसी कंटेंट एनालिसिस का, किसी नॉलेज क्रिएशन का, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो शुद्ध अनुभव है, जो व्यवहारिक अनुभव है, वो उसके माध्यम से पार्टिसिपेंट तक पहुंच सकता है। इसमें सेमिनार के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है, लोग स्वयं करके सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल है क्योंकि समूह में ही संचालित होता है सेमिनार, अतः ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल है। साथ ही साथ किसी भी संगोष्ठी में चूंकि एक्सपर्ट्स को भी आमंत्रित किया जाता है कीनोट स्पीकर के तौर पे, चेयरपर्सन के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे, तो उनकी जो विशेषज्ञता है उससे भी विद्यार्थी परिचित हो सकते हैं और अच्छा नॉलेज और फाइन नॉलेज और पिन पॉइंटेड नॉलेज, वेरीफाइड नॉलेज विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकता है। सेमिनार की जो स्ट्रेटजी है वो विद्यार्थियों को ओपन बनाती है, वो अपने ओपन इस संदर्भ में कि वो तमाम प्रकार के विचारों के प्रति समायोजित रहते हैं, विचारों को स्वीकार करना सीखते हैं, ओपन माइंडेडनेस की प्रवृत्ति से रूबरू कराती है, परिचित कराती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रेजेंटेशन, जनरलाइज कंक्लूजन्स, रिपोर्टिंग, इन सभी विशेषताओं से भी विद्यार्थी दो चार होते हैं और इसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, प्रवीणता हासिल कर लेते हैं, कॉम्पिटेंस हासिल कर लेते हैं। सेमिनार की लिमिटेशंस क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी सीमाएं हैं और कहां पर आकर के सेमिनार एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के तौर पे औचित्यपूर्ण सिद्ध नहीं होता, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो ये कि हर टॉपिक पे सेमिनार, सिलेबस के हर टॉपिक पे सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन कठिन कार्य होता है और कई प्रकार की जो कई पक्ष हैं इसके, सारे पक्षों पर चर्चा संभव नहीं होती। क्योंकि ग्रुप स्ट्रेटजी है, अतः कभी कभी अनावश्यक बिंदुओं पर अनावश्यक वार्तालाप होने लगते हैं और इस कारण से विषयांतर उत्पन्न हो जाता है। लोग जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करनी चाहिए, उस विषय पर चर्चा न करके उसके अनावश्यक पहलुओं पर चर्चा अधिक करते हैं। साथ ही साथ एक सीमा इसकी और है कि यंग माइंड्स, इनएक्सपीरियंस माइंड, इन पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। सेमिनार इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी वहीं पर कामयाब होती है जहां बैलेंस्ड माइंडेड लोग हों, मैच्योर लोग हों, परिपक्व लोग हों और रिसोर्सफुल लोग हों और उनका एक रिसर्च ओरिएंटेशन हो। यदि ऐसे व्यक्ति नहीं हैं तो सेमिनार स्ट्रेटजी फ्रूटफुल नहीं होती है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय अधिक लगता है, समय और धन ये अत्याधिक लगता है, या हम यूं कहें समय, शक्ति और श्रम। समय, शक्ति और धन, ये तीनों सेमिनार स्ट्रेटजी में अत्यधिक खर्च होते हैं, अतः ये भी एक इसकी सीमा है जिसको हम इरेडिकेट करके सेमिनार को एक सफल स्ट्रेटजी के तौर पे प्रयोग में ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।